असल मज़ा इस दुनिया के लिए ऐसा मज़ा नहीं है जैसा हम समझते हैं कि जी यहाँ पे आराम करने हम आए। नहीं, इंशाल्लाह उमुल मसाइब की ये मुजाहिदाना लाइफ हमारे अंदर जहाद का आज़म उजागर करे और हमारे अंदर वाकई एक तहरीक को लेकर आए और हम इंशाल्लाह अपनी जिंदगियों में और हरकत लेकर आए। तो कहना ये है कि जनाब ज़ैनब का ये अमल इतना हसीन है, इतना अजीब है कि आपको देखें यजीद का मैं पहले ख्वाब सुनाती जाऊँ कि यजीद का ख्वाब क्या था। यजीद का ख्वाब ये ख्याली पलाव यूं बना रहा था कि जी अब तो सब कुछ हो चुका, जी हमें ज़ाहरी फतह मिल गई, अब मसाजिद से परचमे इस्लाम और तौहीद को हटाना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा के नाम को ख़त्म करना है और लात उज़्ज़ा और हुबल और उन तमाम चीज़ों को गोया दोबारा से उजागर करना है, जाहिलियत के ज़माने को फिर से वापस लाना है। और ये मैं मुबालगे से नहीं कह रही बल्कि ये बातें खुद यजीद के ही कलमात, यजीद ने ही जो कुफ्र आमेज़ अशआर अपनी ज़बान पर जारी किए उससे मैं आपको बयान कर रही हूँ कि या जब आप दुश्मन की मारिफत आपके सामने बिल्कुल आया हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, तो आपको पता चलता है कि ये दोस्त ये तौहीद की बुनियाद रखने वाली हस्तियों ने किस कदर स्ट्रगल, किस कदर मेहनत, किस कदर काविशें की हैं ताकि ये तौहीद का परचम इसी तरह लहराता रहे। जी सीन यूँ है, जो ख्वाब यजीद ने देखा वो इस तरह से है कि जब ये काम हो चुका, असीर सामने है, यजीद जो है वो तख्त पे बैठा है, सामने सरे हुसैन है, सब जानते हैं इस मंज़र को, हाथ में आसा है, खेजरा का आसा, और बहुत ही अपने सब्ज़ महल में बहुत ही फतह के नशे में गोया इमाम को अजियत देते हुए आपके मुकद्दस दांतों पर ज़रबत लगाते हुए वो शख्स यूं कहता है कि काश, ये अशआर ये यजीद का तर्जुमा है, मफहूम है कि काश मेरे अजदाद जो जंगे बदर में मारे जा चुके हैं हाजिर होते और वो देखते मैंने किस तरह बदला लिया। जंगे बदर क्या थे आप जाके पढ़ें, आपको पता चलेगा अगर बदर का बदला है तो ये कैसा बदला है। बदर इस्लाम और कुफ्र का मुकाबला था और फिर कहते हैं बनी हाशिम ने दीन को हुकूमत के लिए सिर्फ वसीला बनाया था, ना कोई वही थी, ना कोई दीन, ना कोई खुदा, ये तमाम चीज़ें खिलौना था, कोई हकीकत नहीं थी। ये जुमला बहुत अजीब है। तो वो शख्स जो ज़ाहिरन वलीउल मुस्लिमीन बनकर अपने आप को मुसलमानों का वली और अमीर और हाकिम समझ रहा है और अपने पस्त इरादों को अब बिल्कुल अपना पस्त इरादों को जाहिर कर रहा है, गोया कहना चाह रहा है कि बस अब तो ड्रामा ख़त्म, अब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें तो जीत मिल गई, अब मुनाफिकत से कुफ्र की तरफ आ रहा है, अपने पस्त इरादों को जाहिर कर रहा है क्योंकि उसके ख्वाब वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये जो सामने बेचारे असीर बैठे हैं, ये जो इतने दुख और गम और रंज उठाकर चहर बशहर दरबदर होकर आए हैं उनमें से कोई इंकलाब ला सकेगा, ये कौन सोच सकता है। आखिर असीर की कोई बात सुनता है, असीर के बाद में कोई वजन होता है आमतौर पर, बिल्कुल नहीं, ये तो अजीब निराले असीर। ऐसे हालात में इंसान वाकई हैरान होता है कि इतने मसाइब के बावजूद और यजीद की इस कुफ्र आमेज गुफ्तगू के बाद आप देखिए ज़ैनब के जुमलात को। ज़ैनब जो कह रही है कुल्ला अर्ज़िन कुल्लु अर्ज़िन करबला, कि दरबार भी यजीद का हो या इब्ने ज़ियाद का हो वो भी करबला है, वहाँ पर भी क़याम करना है, वहाँ पर भी हुसैनियत का पैगाम उजागर करना है, जैसा वादा ज़ैनब ने लाशे हुसैन से किया था कि ए भाई जब तक अल्लाह अकबर के नारे शाम के कूचों में बुलंद न करूँ, जब तक हुसैन जिंदाबाद हर मुसलमान की ज़बान से ना निकले, उस वक्त तक ज़ैनब चैन से नहीं बैठेगी। अल्लाह करे हम भी कहें कि हम भी ज़ैनबी हैं और हम भी कुछ करेंगे इस्लाम के परचम को बुलंद से बुलंदर करने के लिए। तो यहाँ पर यजीद इस अंदाज से जब कुफ्रामेज़ बातें करता है तो वहाँ ज़ैनब न सिर्फ अपने वक़ार एहतशाम और अपने हवास को खो नहीं बैठती बल्कि अली की बेटी अली की ज़बान से इस तरह से बोल रही है कि उनमें से मैं सिर्फ जल्दी से कुछ अल्फाज बयान करूं कि हाँ जिगर ख्वार माँ की औलाद से कैसे मैं किसी हक की उम्मीद रखूं, तू हिंद जिगर ख्वार की औलाद में से है, उस माँ की नस्ल में से जिसका गोश्त जिसका बदन शहीदों के खून से बना है, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी ऐसी नस्ल से इससे ज़्यादा उम्मीद कहाँ रखी जा सकती है। और फिर وہ یہ جو یزید کہہ رہا تھا کہ جی جاہلیت کے زمانے کو میں پھر واپس لے آؤں گا. جناب زینب کا ریئیکشن دیکھیے, یقین دیکھیے, علم دیکھیے, ایمان دیکھیے, علم واقعا بالغیب جو قرآن نے دیا ہے اس پر بھروسہ دیکھیے. کیا فرماتی ہیں کہ ناممکن, امپاسبل کہ تم زمانے جاہلیت کو واپس لا سکو. کیوں؟ کیونکہ زینب کہتی جو چال چلنی ہے تم چلو, جتنے تم نے مکر و فریب کرنے کرو, جتنے مکڑی کے جال بچھانے بچھا لو, یہ سب بہت ویک ہے, ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم کسی بھی طرح تم ہمارا ذکر محو نہیں کر سکو گے, کر ہی نہیں سکو گے. کیوں؟ ہمارے پاس ایسا یقین کیوں نہیں ہے؟ زینب کو یقین کہاں سے ملا؟ قرآن سے ملا. وہ مفسر قرآن ہے, وہ قرآن ناطق کی بیٹی ہے, جسے قرآن نے کہا کہ جتنی بھی پھونکیں یہ مارے, یہ پھونک نور الہی کو کیا بجھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو زینب کا یقین ہے جو اس زمانے میں کہا. اب زینب جب تمام درباروں کو فتح کر چکی, بازاروں کو فتح کر چکی, شہروں کو فتح کر, جب اپنے وطن واپس پہنچتی ہے تو وہاں پر بھی کل ارض کربلا کے تحت مسلسل اپنا قیام, اپنا جو مشن ہے اسے جاری رکھتی ہے, یہاں تک کہ حاکم مدینہ جس کا نام عمر بن سعید تھا وہ خط لکھتا ہے یزید کو اور کہتا ہے کہ شدید خطرہ ہے ہمیں اس زینب کی جانب سے, علی کی بیٹیوں کی جانب سے, انہیں دور کرو. اور وہاں سے جواب آتا ہے کہ زینب کو حجاز سے جلا وطن کیا جائے, اصلا حق نہیں ہے کہ وہ حجاز میں رہے, زینب کو لوگوں سے دور رکھا جائے, کیونکہ جہاں زینب ہے وہاں نور ہے, اور جہاں پر نور ہے وہاں پر پھر یزیدیت نہیں ہے, جہاں حسینیت ہے. اور اس طرح وہ ہستی جو ایک مرتبہ اسیر بن کر شام گئی تھی, بعض روایات کے مطابق دوبارہ تبعید ہو کر ظالم کی جانب سے پھر اپنے وطن کو چھوڑتی ہیں, اور وہ ہستی دوبارہ شام پہنچ جاتی ہے, اور بہت سے دل اور بہت سے عاشق جو ہیں وہ ان کے حرم اور ان کے ذریعے کے گرد پروانہ وار طواف کرتے ہوئے ہمیں آج کل نظر آتے ہیں. یقیناً یہ ہستی زینب کبریٰ کی ہے جو سر تپا جہاد و محنت و دل سوزی و ایثار اور محبت اور شجاعت کا ہمیں درس دے رہی ہے. آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں سیرت زینبی پر چلنے کی توفیق حقیقی معنی میں دے, اور سیرت زینب میں جہاں ان کی ہم نے عصمت, علم, ایمان, یقین, شجاعت کو دیکھا, وہاں ان کی عبادت, جو کہ عبادت ہمیں ملتی ہے کہ عاشور کے بعد آپ نماز تہجد پڑھ رہی ہیں, آپ کی یہ عبادت کم نہیں ہے اس نماز سے جو نبی نے مسجد الحرام میں پڑھی, کم نہیں ہے اس نماز سے جو علی نے جنگ صفین میں پڑھی, کم نہیں ہے اس نماز سے جو حسین نے تیروں کی بارش میں پڑھی. خدا کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی علم و یقین و عبادت کے ساتھ گزارے جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے گزاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.